अब पढ़ेंगे कि कर्ज़ भी कोई नहीं देता, कोई मानता ही नहीं कर्ज़ क्यों दे। तो आखिरी ऑप्शन रहन, प्लच जिसको बोलते हैं। वइन कुंतुम अला सफ़रिन वलम तजिदू कातिबन, अगर तुम में से कोई शख्स दूसरे पर भरोसा करके इसके साथ कोई मामला करे तो जिस पर भरोसा किया गया है उसे चाहिए कि अमानत अदा करे और अल्लाह अपने रब से डरे, और हरगिज़ शहादत को मत छुपाओ। जो शहादत छुपाता है इसका दिल गुनाह में आलूदा है, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं। आखिरी रुकू है सूरत बकरा का। अल्लाह के नबी सल्लम रात को पढ़ के सोते थे। आपने कहा जिसने ये दुआएं रात को पढ़ ली अल्लाह ताला उसको पूरी रात के लिए किफ़ायत करेगा, शैतानों से और इस तरह अगर कोई और अमल ना भी कर सका उसको भी करेगा। और इस एक रुकू में पूरी सूरत बकरा का खुलासा भी है। दिल के साथ सुनेंगे और फिर अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे, और जो बीच में दुआएं आ रही हैं उसके ऊपर आमीन भी कहेंगे अपने तौर पर। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है। तुम अपने दिल की बातें ख्वा ज़ाहिर करो ख्वा छुपाओ, बहरहाल अल्लाह इनका हिसाब तुमसे लेगा। फिर इसे इख्तियार है जिसे चाहे मुआफ़ कर दे और जिसे चाहे सजा दे, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तैयार हैं हिसाब के लिए? लिखते हैं मुहासबे का नुक्ता। क्या मैं हर बात का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं दिल के अंदर छुपाई हुई बातों के मुहासबे के लिए तैयार हूँ? इस एक आयत के ऊपर सहाबे कराम की हालत बुरी हो गई थी। रोया करते थे, तड़पा करते थे। अबू बकर सिद्दीक कहा करते थे कि अबू बकर काश तो एक तिनका होता और तोड़ के फेंक दिया जाता। हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा फरमाया करती थी, काश तो एक चिड़िया होती, उड़ती इधर से उधर और जब मरती तो भूली बिसरी हो जाती। उनकी रातों की नींदें ख़त्म हो जाती थी इस ख्याल से कि अल्लाह हमसे हिसाब लेगा। हमें भी अपने अंदर यही एहसास पैदा करना है। आमन अर्रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, या एक छोटी सी तस्दीक कर दें कि जो आखिरी आयतें दो यहाँ से शुरू होती हैं, मैंने आगे बोल दिया था रुकू का, तो रुकू आखिरी भी अहम है लेकिन जो फजीलत बयान होती है अहदीस में वो आखिरी दो आयतों की है जो यहाँ है। आमन अर्रसूल से, रसूल उस हिदायत पर ईमान लाया जो इसके रब की तरफ से इस पर नाजिल हुई, और जो लोग इस रसूल के मानने वाले हैं और इन्होंने भी इस हिदायत को दिल से तस्लीम कर लिया, ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों को मानते हैं। सूरत बकरा के आगाज़ में हमने एक जुमला पढ़ा था, यूमिनून बिल गैब। वहाँ सिर्फ एक लफ्ज़ में गैब के ऊपर ईमान की बात कर दी, अब सूरत के आखिर में उसे गैब की तफसील आता है। दो लफ्ज़ अब सुनते हैं, एक होते ईमान मुफस्सल और एक ईमान मुजमल। तो वहाँ मुजमल था, खुलासा था, यहाँ मुफस्सल है यानी तफसील। इनका कॉल ये है कि हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं करते, हमने हुक्म सुना और इताअत कबूल की। हमारा क्या जवाब होता है? हम जब हुक्म सुनते हैं तो क्या कहते हैं? यहाँ मुहासबे का नुक्ता नोट करेंगे। जब मैं अल्लाह का कोई हुक्म सुनती हूँ तो क्या उस पर अतात करने का वादा करती हूँ या नाफरमानी का? गुफरान का रब बना व इलई कल मसीर, मालिक हम तुझसे ख़ता बख्शी के तालिब हैं और हमें तेरी ही तरफ पलटना है। जब बंदा इतने दिल से टूट के अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह को प्यार आता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी मुतनफ़िस पर उसकी कुदरत से बढ़कर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालता। हर शख्स ने जो नेकी कमाई है उसका फल उसी के लिए है, और जो बदी समेटी है इसका वबाल उसी पर है। लिहाजा ईमान लाने वालो, तुम यूं दुआ किया करो कि रब्बना ला तुआखिसना इन नसीना औ अख्ताना, ए हमारे रब हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाए इन पर गिरफ्त ना कर। आमीन तो कह दे। मालिक हम पर वो बोझ ना डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार जिस बोझ को उठाने की हम में ताकत नहीं है वो हम पर न रख। हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम फरमा, तू ही तो हमारा मौला है, बस काफरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। ये आखिरी दुआ पे गौर कर लीजिए, पूरी सूरत हमें यही पैगाम दे के गई कि इस्लाम को गालिब करो और कुफार के ऊपर गलबे की अल्लाह से मदद मांगो। दो बार ये दुआ सूरत में गुजरी। हमने देखा था दूसरे पारे के आखिर में भी यही दुआ थी, रब्बना फ़रिग़ अलैना सब्रम वसब्बित अक़दामना वंसुरना लिल क़ौमिल काफ़िरीन, और यहाँ दोबारा आ गई تو بتائیے ہم نے کتنی بار سورت بقرہ پڑھی؟ کیا سورت بقرہ کے پڑھنے کے دوران یا اس کی تکمیل کے اوپر ہمارے دل میں یہ تڑپ آتی تھی یا آتی ہے آج بھی کہ اللہ ہمیں دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرما؟ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے اس صورت میں جو بھی خطائیں غلطیاں ہوئیں اس کو اپنی رحمت سے معاف کرے. ہماری سوچ اگر بھٹک گئی, ہم کچھ اور سوچنے لگ گئے, ہم ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے, ہم نے تیرے کلام کا حق اگر نہیں دیا تو اے مالک تو ہمیں معاف کر دے, اور تیرے کلام کے سامنے ہم نے اگر کوئی اور چیز کو اہمیت دے دی تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس پہ پکڑنا نہیں. اس کے بعد اب قرآن پاک کی دوسری خوبصورت صورت, طویل صورتوں میں اس کا نمبر بھی دوسرا ہے, سورۃ آل عمران شروع کرتے ہیں. سورۃ بقرہ متنی دور کے آغاز میں نازل ہوئی تھی, جیسے کہ ہم نے بات کر چکے ہم اس کے بارے میں. سورۃ آل عمران اس کے بعد کے دور میں تھی, غزوہ بدر اور احد کے درمیان کے دور میں یہ نازل ہوئی. یہ وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کی لوگوں کے دلوں پہ دھاک تو بیٹھ چکی تھی, لیکن غزوہ احد کا کچھ اس طرح کا معاملہ بنا کہ جس سے لوگ دوبارہ دو رخے ہونے لگے. انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے, ممکن ہوا تو سورت کے اختتام پہ کچھ باتیں کوٹ کروا دوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے, حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں. اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں اسم اعظم ہے, یعنی وہ نام جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو وہ محروم نہیں کرتا. تو اس آیت, اسی طرح آیت الکرسی اور سورۃ طٰہٰ میں ایک آیت ہے. تو آپ کو اور مجھے اپنے عمل کے لیے ایک بات نوٹ کرنی چاہیے کہ جب بھی کبھی دعا مانگیں بڑے دل سے, بڑے تپاک سے, کوئی خاص موضوع, کوئی خاص موقع ہے, تو ساتھ ہی اس آیت کا بھی آپ حوالہ دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ لا الہ الا اللہ ہیں اور آپ حی القیوم ہیں. یا اس آیت کو بھی آپ پڑھ سکیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی. اے نبی, اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے, اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کے حکموں کو نہ مانیں, اب جو لوگ اللہ کے حکموں کو قبول کرنے سے انکار کریں, ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. سوچیے, محاسبے کا نقطہ نوٹ کریں, کیا میں اس احساس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں کہ میری ہر حرکت, ہر کال, ہر فعل, ہر بات اللہ کے سامنے کھلی ہوئی ہے؟ وہی تو ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے, وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. غور کریں اپنی صورت پہ, کبھی اپنی شکل کو برا نہ کہیں, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہماری شکلیں, ہمارے قد کاٹ, ہمارے رنگ ڈھنگ, سب اللہ کا فیصلہ ہے. اگر آپ نے اپنی شکل کو برا کہا تو گویا کہ آپ اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو گئے. یہاں ایک بڑا مشکل پوائنٹ محاسبے کا, خاص طور پہ خواتین کے لیے نوٹ کر لیں, کیا مجھے اپنی شکل پسند ہے؟ کہیں میں اپنی شکل سے ناراض تو نہیں ہوں؟ یس ہے تو خوش ہو جائیں, نو ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں. اے نبی, وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے. اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں, ایک حکم والی یعنی محکمات, جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں, یعنی جس میں نماز, روزے, حج, زکوٰۃ کا حکم ہے, بالکل آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں. عام بندے کو اسی بات پہ غور کرنے کا حکم ہے کہ ان باتوں پہ غور کرو جس کا تعلق ہماری اس دنیا کی زندگی سے ہے. لیکن کچھ ایسی بھی ہیں जिनके बारे में फरमाया, और दूसरी मुतशाबहात हैं, जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वो फितने की तलाश में हमेशा मुतशाबहात के ही पीछे पड़े रहते हैं और इनको मानी पहनाने की कोशिश किया करते हैं, हालांकि इनका हकीकी मफहूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बखिलाफ इसके जो लोग इल्म में पुख्ताकार हैं वो कहते हैं कि हमारा इन पर ईमान है, ये सब हमारे रब ही की तरफ से हैं, और सच ये है कि किसी चीज़ से सही सबक सिर्फ दानिशमंद लोग ही हासिल करते हैं। वो अल्लाह से दुआ करते हैं, परवरदिगार जब तूने हमें सीधे रास्ते पर लगा दिया तो फिर कहीं हमारे दिलों को टेढ़ा मत कीजिए, हमें अपने ख़जाना फैज़ से रहमत अता फरमाइए कि तू ही फ़याज़ हकीकी है। परवरदिगार यकीनन सब लोगों को तू एक रोज़ जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शुबा नहीं, तू हर किस अपने वादे से टलने वाला नहीं। इस दुआ को हाईलाइट कर लेते हैं। असल में किसी ईमान वाले की सबसे कीमती मता हिदायत है, जो हम में से बहुत सारे लोगों को रमज़ान के महीने में नसीब हो जाती है। 5 वक्त की नमाज़ें भी वक्त पे होने लगती हैं, झूठ भी ज़िंदगी से निकलने लगता है, कुरान पाक से ताल्लुक़ भी जुड़ता है। तो आइए ज़रा शऊर से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह जिस तरह तूने हमें इस रमज़ान में हिदायत दे दी और हम तेरे कलाम के साथ जुड़ गए, तो अब इसके गुज़रने के बाद हमारे कदम पीछे ना ले जाना, क्योंकि सबसे कीमती मता हिदायत है, ये बिन मांगे नहीं मिलती। माल दौलत औलाद सेहत जवानी सब मिल जाएगा, हिदायत उसको मिलेगी जो मांगेगा। आप यहाँ कुरान के लिए आके बैठे हैं, क्यों आए हैं? आपने मांगा, ख्वाहिश बड़े लोगों ने की अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नहीं पहुँच सके। शायद मजबूरियाँ तो होंगी, लेकिन मजबूरियाँ जो आती हैं उसकी भी वजह हमारी ख्वाहिश की कमी होती है। अल्लाह देखना चाहता है कि हम किस चीज़ को कुर्बान करके आते हैं। आपने कभी हर्डल रेस खेली होगी, रुकावटों वाली दौड़ होती है, बच्चों को पता होगा या बच्चियों को समझ आ गई होगी, सामने रास्ते में चीज़ें रखते जाते हैं, उसको फलांग फलांग के आपको गुजरना होता है, जो पहले से रास्तों में से हटा के गुजर जाए वो जीत जाता है। अल्लाह का रास्ता भी ये हर्डल रेस है। हम सब की ज़िंदगी में ये जो मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं ना, घर औलाद माल सेहत जवानी वक्त मसरूफ़, ये हर्डल्स हैं। अल्लाह ताला देखना चाहता है कौन इनके अंदर से बड़े प्यार से तरीके से गुजरता हुआ जल्दी से मेरी तरफ आ जाता है, और कोई चले आहिस्ता आ जाए अपनी मजबूरियों को ठीक करता रहे, लेकिन जो इन रुकावटों को देखकर सामने आने की कोशिश ना करे तो वो तो फिर जन्नत तक नहीं पहुंच सकेगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में ना करे। इन्नल्लज़ीन कफरू लन तुग़निया अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया, जिन लोगों ने कुफर का रवैया इख्तियार किया है इन्हें अल्लाह के मुकाबले में ना उनका माल कुछ काम देगा ना औलाद, वो दोजख का ईंधन बनकर रहेंगे। इनका अंजाम वैसा ही होगा जैसा फिरौन के साथियों और इनसे पहले के नाफरमानों का हो चुका कि उन्होंने आयात इलाही को झुठलाया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने इन्हें इनके गुनाहों पर पकड़ लिया, और हक ये है कि अल्लाह सज़ा देने वाला है। पस से नबी, जिन लोगों ने तुम्हारी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया है उनसे कह दो कि करीब है वो वक्त जब तुम मग़लूब हो जाओगे और जहन्नम की तरह हांके जाओगे, और जहन्नम बड़ा ही बुरा ठिकाना है। तुम्हारे लिए इन दो गिरोहों में एक निशान इबरत था जो बदर में एक दूसरे से नबर्द आज़मा हुए। पहली जंग थी जो मदीना में आने के बाद मुसलमानों को लड़नी पड़ी। एक गिरोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा गिरोह काफिर था। देखने वाले बचश्मे सर देख रहे थे कि काफिर गिरोह मोमिन गिरोह से दो चंद है, यानी हर दौर में कुफार की तादाद मुसलमानों से ज़्यादा ही हुई, मगर नतीजे ने साबित कर दिया कि अल्लाह अपनी फतह और नुसरत से जिसको चाहता है मदद देता है। दीदा बीना रखने वालों के लिए इसमें बड़ा सबक पोशीदा है। तो आज फिर मुसलमानों को क्या करना चाहिए? ये गम पालना चाहिए कि हम थोड़े हैं, रिसोर्सेस नहीं हैं? नहीं, ज़रूरत है उस ईमान और तकवा को बढ़ाने की जिसकी वजह से बदर में मदद की गई। इस जंग की तफसीलात इंशाअल्लाह ताला सूरत अनफाल में हम पढ़ेंगे, जैसे कि सूरत आले इमरान में आगे ग़ज़वे उहद की तफसीलात आने वाली हैं। अल्लाह ताला जंगों के तस्करे के बीच में दिल को छू जाने वाली आयत पेश करते हैं कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन्निसाई वल बनीन, लोगों के लिए मरगूबात नफ्स यानी औरतें औलाद सोने चांदी के ढेर और चुचीदा घोड़े मवेशी और ज़रई ज़मीनें बड़ी खुशाइन बना दी गई हैं, मगर ये सब दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के सामान हैं। हकीकत में जो बेहतर ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। ذرا لسٹ تو بنائیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں انسانوں کے ویک پوائنٹس کی بات کی. عورتیں کس کو اچھی نہیں لگتی, سونا چاندی کس کو پیارا نہیں لگتا, گھوڑے کل تھے آج گاڑیاں ہیں, برانڈڈ گاڑیاں اور چوپائے, مویشی, کھیتیاں, یہ دنیا کی زندگی ہے. یاد رکھیے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہمیں اپنے ارد گرد دیکھتا ہے نا, یہ اللہ نے دیا ہے. ان سے محبت کرنا گناہ نہیں. زین للناس, ہم نے دیا. ہمارے ہاں آج دین کے نام پہ ایک ایسا کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ دولت والا تو سر چھپاتا ہی پھرتا ہے, وہ تو سوچتا ہے میں پکا جہنمی ہوں, اور جن کے پاس ذرا تھوڑی ہوتی ہے نا, وہ دولت والے کو یا اچھے کپڑے پہننے دیکھے کو, اچھے زیور پہننے کو دیکھ کے کہتے ہیں دیکھ نا اللہ پوچھے گا, آگ میں جائے گا, ہرگز نہیں جائے گا. دیکھیے یہ دنیا کی نعمتیں اللہ کی دین ہے, لیکن کیوں دی؟ ان نعمتوں کو استعمال کر کے آخرت کو حاصل کرو. یہ مینز ہے. مثلا دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس گاڑیاں نہ ہوتیں, یا اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوتے اور آپ ٹکٹ لے کر ٹرین پہ اور بس پہ اگر یہاں پہنچے ہیں, تو کیا آپ یہاں قرآن پاک سننے آ سکتے تھے؟ نہیں آ سکتے تھے نا. اگر یہ نرم آرام دہ کرسیاں نہ ہوتیں تو آپ بیٹھ سکتے تھے؟ پیسے سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو لوگوں کو رہبانیت والا دین دکھاتے ہیں نا کہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, اس سے آج دین والوں سے ریئیکشن ہو گیا. لوگ دولت تو نہیں چھوڑیں گے, دین چھوڑ گئے. آج اگر اس طرح کی کیفیت ہے تو بالکل صحیح نقطۂ نظر واضح کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری سے. حلال طریقے سے جو ملے اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے لو, حتیٰ کہ رزق حلال بھی عبادت ہے, لیکن اس میں ہی کھوکے نہ رہ جاؤ.